पृष्ठ संख्या 105, देश का विभाजन। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हो गया, किंतु अखंड भारत नहीं रहा, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में बट गया। प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत विभाजन के लिए कोई एक घटना उत्तरदायी है, या इसके विभाजन की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो गई थी। भारत विभाजन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो की नीति। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद अपने प्रभुत्व को मजबूत बनाने के लिए प्रारंभ से ही फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की नीति को अपनाया। इसके तहत अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना शुरू किया, ताकि वे सम्मिलित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न ले सकें। प्रारंभ में अंग्रेजों ने हिंदुओं का पक्ष लिया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से सत्ता हथियाई थी और मुसलमानों को दुश्मन की दृष्टि से देखते थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज एओ ह्यूम ने की। कुछ ही वर्षों के बाद कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता असहाय होने लगी, अतः उन्होंने अब मुसलमानों का पक्ष लेना शुरू कर दिया और हिंदुओं के प्रति घृणा, वैमनस्य तथा दुश्मनी का बीज बोना शुरू कर दिया। इसके लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई तथा 1909, 1919 और 1935 के सुधार अधिनियमों में सुधार के बहाने मुसलमानों एवं अन्य अल्पसंख्यकों को अलग चुनाव क्षेत्र देकर सदा सदा के लिए सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। यही नहीं, अंग्रेजों ने मुसलमानों को अलग राष्ट्र की स्थापना के लिए उकसाया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमान अलग राष्ट्र की मांग करने लगे और अंततः देश का विभाजन होकर ही रहा। पृष्ठ संख्या 106। दूसरा, हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति अविश्वास। हिंदू मुसलमानों को अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। सल्तनत काल और मुगल काल में मुस्लिम राजाओं ने हिंदुओं पर अनेक जुल्म एवं अत्याचार किए थे, जिससे हिंदुओं में यह भावना व्याप्त हो गई कि मुसलमान कभी भी अपने नहीं हो सकते। औरंगजेब जैसे शासक ने हिंदुओं की भावनाओं को बहुत अधिक ठेस पहुंचाई थी, क्योंकि उसने हिंदू धर्म पर आक्षेप करते हुए बहुत से मंदिरों को तुड़वा दिया था। तीसरा, हिंदुओं की अछूतवादी नीति। हिंदुओं की अछूतवादी नीति ने मुसलमानों के मन में संदेह तथा अविश्वास को जन्म दिया। कट्टरवादी हिंदू मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार का मेलजोल नहीं पसंद करते थे, बल्कि ये मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार में विश्वास करते थे। कट्टर हिंदुओं के इस व्यवहार से मुसलमान दुखी हुए। मुसलमानों को हिंदुओं के बहुसंख्यक शासन स्थापित हो जाने का भय उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप हिंदुओं के प्रति मुसलमानों में घृणा की भावना पैदा हो गई। आगे चलकर इसी भावना ने सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लिया। चौथा, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता की भावना को तो बढ़ाया ही, साथ ही मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार से अंग्रेजी सरकार से सहायता लेना शुरू किया। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम लीग तथा अन्य बहुत सी मुस्लिम संस्थाओं ने हिंदुओं के प्रति कटु विरोधी प्रचार करना शुरू किया। ये हिंदुओं को घृणा से काफिर कहा करते थे। इन्होंने नारा दिया, इस्लाम खतरे में है, काफिर का विरोध करना धार्मिक आज्ञा है। इस भावना ने पाकिस्तान की स्थापना को और मजबूत किया। पांचवा, हिंदू संस्थाओं का हाथ। कुछ हिंदू संस्थाओं ने भी भारत विभाजन को बल प्रदान किया। इसमें प्रमुख था हिंदू महासभा। 1937 से 1939 ईस्वी के हिंदू महासभा के अधिवेशनों से द्विराष्ट्र सिद्धांत को विशेष बल मिला था। 1937 ईस्वी में अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सावरकर थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, भारत को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्र नहीं माना जा सकता है, अपितु यहाँ मुख्यतः दो, हिंदू और मुसलमान राष्ट्र हैं। 1939 में सावरकर ने कहा था, अब हमारी राजनीति विशुद्ध हिंदू राजनीति होगी। इससे मुसलमानों ने यह महसूस किया कि उनकी सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षा तभी संभव होगी जब अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए। छठा, जिना की हठ धर्मी। यदि कहा जाए कि पाकिस्तान के निर्माण में सबसे अधिक योगदान जिना का था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पृष्ठ संख्या 107। प्रारंभ में जिना राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के समर्थक थे, किंतु धीरे धीरे उनके विचारों में परिवर्तन होता गया। उनके विचारों में हिंदुओं के प्रति विरोध भरने का काम अंग्रेजों ने किया। पाकिस्तान के निर्माण के लिए जिना ने मुसलमानों को संगठित कर आंदोलन शुरू किया। जिना ने राष्ट्रीय आंदोलन में समय देने के लिए अंग्रेजों के समक्ष शर्त रखी कि देश की आज़ादी के बाद वे पाकिस्तान का निर्माण करने में पूरा सहयोग देंगे। जिना की हठधर्मिता के कारण ही गोलमेज सम्मेलन, बेवेल योजना, कैबिनेट योजना, शिमला सम्मेलन असफल हो गया और सांप्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। जिन्ना भलीभांति जान चुके थे कि भारत में उन्हें सर्वोच्च पद प्राप्त नहीं होगा। यह तभी संभव है जब एक अलग अखंड राष्ट्र बनाया जाए, जबकि गांधी जिन्ना को अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार थे। मौलाना आज़ाद के शब्दों में, स्वभाव से दम्भी, हठी एवं जिद्दी जिन्ना समझौते में विश्वास नहीं करते थे। वे पाकिस्तान के लिए कृत संकल्प थे और इसके लिए प्रत्येक संभव उपाय अपनाने को तैयार थे। सातवां, ब्रिटिश सरकार की दंगों के प्रति उदासीनता। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही सांप्रदायिकता की भावना को बल मिला। आज़ादी मिलने से पूर्व अनेक बार हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगों को कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसने सांप्रदायिकता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा ही दिया। सांप्रदायिक दंगों में सरकार की नीति मुसलमानों के प्रति संरक्षक की रही। ब्रिटिश शासन की इस नीति ने विभाजन को बल प्रदान किया। आठवां, कांग्रेस की नीति। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सदैव मुस्लिम लीग से समझौता करने के लिए तैयार रहती थी। कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग की बातों को स्वीकार करते हुए लखनऊ पैक्ट किया। इसके द्वारा कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन और मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व को मानकर भारत में सांप्रदायिकता को स्वीकार कर लिया। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। कांग्रेस की नीति ने 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के प्रति भी मुस्लिम लीग को कड़ा रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद भी कांग्रेस मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए उसके समक्ष झुकती रही। गांधी मुस्लिम लीग के साथ सदैव सहयोग की नीति को अपनाते रहे। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता कायम करना रहा। मुस्लिम लीग के नेताओं से बार बार मिलने से उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती ही गई। इससे भी भारत विभाजन को बल मिला। पृष्ठ संख्या 108। 1937 के बाद कांग्रेस का रुख कठोर होता गया। इस वर्ष हुए चुनाव में कांग्रेस को थोड़ी बहुत सफलता मिली। जिन्ना संयुक्त प्रांत में संयुक्त सरकार बनाना चाहते थे, किंतु कांग्रेस ने इसके लिए अनेक शर्तें रखी। इससे जिन्ना खीण हो उठे और कांग्रेस में उनका बचा खुचा विश्वास भी समाप्त हो गया, और जिन्ना ने कांग्रेस को हिंदू फासिस्ट संस्था कहा। नवा, मुस्लिम जनता को भड़काया जाना। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध जोर शोर से प्रचार करना शुरू किया। कांग्रेस के शासन को अभी 8 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि मुस्लिम लीग ने पीरपुर के राजा के नेतृत्व में एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी ने कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों में मुसलमानों के कष्टों को एक झूठी सूची तैयार की तथा घोषणा की कि बहुमत अत्याचार से बढ़कर और कोई अत्याचार नहीं है। इससे मुस्लिम जनता बहुत प्रभावित हुई और मुस्लिम जनता इसका एकमात्र हल पाकिस्तान के निर्माण में ही देखने लगी। दसवां, अंग्रेजों की भारत को कमजोर करने की नीति। ब्रिटिश सरकार का यह सोचना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ब्रिटिश से अपना संबंध सदा के लिए अलग कर लेगा। इससे वे भारत के कच्चे माल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भविष्य में भी भारत से लाभ उठाते रहें। इसके लिए यह जरूरी था कि अखंड भारत को आज़ाद करने से पहले उसको विभाजित कर दिया जाए, ताकि विभाजित प्रदेश आपस में लड़ते रहें और इसका फायदा ब्रिटिश सरकार उठाती रहे। साथ ही विभाजित प्रदेश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार पर निर्भर रहें। 11वां, सांप्रदायिक दंगे। पाकिस्तान की मांग को लेकर पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। देश में अराजकता की स्थिति चारों तरफ व्याप्त हो गई। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई आंदोलन मनाने से भी सांप्रदायिक दंगे और तीव्र हो उठे। चारों ओर अनैतिकता और रक्तपात का तांडव नृत्य होने लगा। सांप्रदायिक दंगों ने बच्चों एवं औरतों को भी नहीं छोड़ा। सांप्रदायिकता की चपेट में अनेक निर्दोष व्यक्ति भी शिकार हुए। 16 अगस्त 1939 को मौलाना आज़ाद ने कहा था, 16 अगस्त 1939 को भारत में काला दिन है, क्योंकि इसी दिन सामूहिक हिंसा ने कलकत्ता जैसे महानगरी को हत्या, रक्तपात और बलात्कारों की बाढ़ में डुबो दिया। पृष्ठ संख्या 109। 12वां, पाकिस्तान की स्थिरता में संदेह। बहुत से कांग्रेसी नेताओं का मानना था कि यदि पाकिस्तान का निर्माण होता है तो यह अस्थायी होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक अस्थायी राज्य नहीं हो सकता और कभी न कभी अस्थायी रूप से भारत में पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार भारत का विभाजन अस्थायी है। यही सोचकर कांग्रेस के अनेक नेताओं ने भारत विभाजन को स्वीकार किया। 13वां, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। भारत विभाजन के महत्वपूर्ण कारणों में लॉर्ड माउंटबेटन का योगदान भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने व्यवहार तथा राजनीतिक चातुर्य का परिचय देते हुए देश के विभाजन के लिए विभाजन विरोधी नेताओं को मना लिया। इसमें प्रमुख थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि। क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने यह सोचा भी नहीं था कि अखंड भारत का विभाजन हो जाएगा, किंतु ऐसा हुआ। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, एक अखंड भारत भारतीय समस्या का सर्वोत्तम समाधान होता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अलावा अन्य किसी आधार पर दलों में समझौता होने की संभावना नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने भारत विभाजन को हिचक के साथ स्वीकृति दी थी। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के विचार यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। सरदार पटेल के अनुसार, हमने यह महसूस किया कि हम यदि पाकिस्तान को नहीं मानते तो भारत बहुत से टुकड़ों में बंट जाता और देश नष्ट भ्रष्ट हो जाता। पद संभालने के बाद हमने महसूस किया कि हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। केवल पाकिस्तान नहीं बनता, अनेक बनते। प्रत्येक दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई बनती। 25 सितंबर 1948 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए सरदार पटेल ने कहा था, यदि एक अंगूठा विषपूर्ण हो जाए तो उसे अलग कर देना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण शरीर को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान निर्माण के पश्चात भी हमारे पास 75 से 80% भारत शेष रहेगा, जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार विकसित और सशक्त बना सकते हैं। पृष्ठ संख्या 110। यदि मुसलमानों को यहाँ रहने के लिए विवश किया गया तो फूट और मनमुटाव के कारण प्रगति और योजना कुछ भी संभव नहीं हो सकेगा। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, पाकिस्तान की स्वीकृति से शेष भारत संगठित और सशक्त बन सकेगा, जिससे देश उन्नति करेगा और विश्व के राष्ट्रों में अपना स्थान प्राप्त करेगा। बीपी मेनन का मानना था, देश में गृह युद्ध शुरू होने से पहले देश का बंटवारा स्वीकार कर लेना ज़्यादा उचित रहा, क्योंकि सारे देश का वातावरण विषाक्त हो गया था। हिंसा, द्वेष अपहरण, बलात्कार, धर्म परिवर्तन जैसे अनैतिक कार्य प्रतिदिन हो रहे थे। मौलाना आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में यह विचार व्यक्त किया है कि भारत विभाजन अनिवार्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल जैसे नेताओं ने व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर ही हमें इसे स्वीकार किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा, माउंटबेटन योजना को स्वीकार करना लीग एवं अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देने के सदृश है। स्वतंत्रता के मार्ग में प्रत्येक देश को बाधाएं उठानी पड़ती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को भी ये दिन देखने पड़े थे। अतः कांग्रेस की कार्यकारिणी ने कमजोरी और निराश की अवस्था में इस योजना को स्वीकार किया। साम्यवादियों तथा गांधीवादियों का मानना है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने इसलिए विभाजन को स्वीकार किया कि सत्ता का इंतजार उनके लिए असहाय हो रहा था। उन्होंने गांधी जी की सलाह की उपेक्षा कर दी, जिससे गांधी जी इतने मर्माहत हुए कि उनकी और जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। किंतु फिर भी उन्होंने सांप्रदायिक घृणा का अकेले ही मुकाबला किया। उनके इस प्रयास की प्रशंसा में माउंटबेटन ने उन्हें एक वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। खान अब्दुल गफ्फार खान का कहना था कि भारत का विभाजन कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने कराया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं श्री राजगोपालाचारी ने विशेष भूमिका निभाई थी। राम मनोहर लोहिया ने भारत विभाजन के लिए कांग्रेस नेताओं की स्वार्थ, लोलुपता तथा बुढ़ापे को स्वाभाविक निराशा को दोषी ठहराया। 3 जून 1947 को पाकिस्तान स्वीकार करने के लिए जनता से अनुरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कई पीढ़ियों से हमने स्वतंत्र व संयुक्त भारत के लिए संघर्ष किया तथा स्वप्न देखे। पृष्ठ संख्या 111। भारत के विभाजन का विचार तक हम सबके लिए अत्यंत दुखमय विषय है, किंतु फिर भी मेरा विश्वास है कि हमारा वर्तमान निर्णय सही है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि देश में सांप्रदायिकता का अंत करना अनिवार्य था, क्योंकि हम मुस्लिम लीग पाकिस्तान के बिना किसी भी बात पर समझौते के लिए तैयार नहीं थी। देश में शांति कायम करने के लिए ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने देश के विभाजन को स्वीकार किया। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सांप्रदायिकता के आधार पर देश का विभाजन तो हुआ, किंतु देश में सांप्रदायिकता समाप्त नहीं हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारत के विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए, साथ ही विभाजन को लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। यह प्रस्ताव 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। नॉर्मन डी पॉमर ने लिखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतने कम समय में और इतने कम वाद विवाद के बाद पास हुआ हो। भारत मंत्री अर्ल लिस्टोवेल ने कहा था, स्वतंत्रता का अर्थ बाहरी दबाव की अनुपस्थिति है। हमारे देश के विधान निर्माण के इतिहास में यह अधिनियम अद्वितीय है। इससे पूर्व कभी भी संसार की आबादी के इतने बड़े भाग ने केवल एक विधान द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थीं। पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत का विभाजन कर पाकिस्तान बना दिया जाएगा। भारत 2 अधिराज्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंतर्गत 2 बाजू विंग्स थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल तथा सिलहट शामिल था, तथा पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बदावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की 8 रियासतें सम्मिलित की गई थीं। पृष्ठ संख्या 112। दूसरा, संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक दोनों अधिराज्यों को संविधान सभाओं में अपने अपने अधिराज्य के लिए कानून बनाने की आज्ञा दी गई। इसके साथ ही इन दोनों को अपनी इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी होगी। इस प्रकार संविधान सभाएं प्रभुत्व संपन्न होंगी। तीसरा, दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। भविष्य में गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल केवल वैधानिक शासक होंगे। चौथा, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन यह निश्चित किया गया कि जब तक दोनों अधिराज्य अपना अपना नया संविधान नहीं बना लेते, वहां शासन 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा चलाया जाएगा। साथ ही दोनों अधिराज्यों को 1935 के अधिनियम में संशोधन का अधिकार होगा। पांचवा, संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय इनकी शक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद विधानमंडलों की स्वीकृति के बिना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम लागू नहीं होगा। छठा, प्रांतीय विधानमंडल। जब एक ही संविधान के अनुसार प्रांतों में निर्वाचन नहीं होते हैं तब तक प्रांत में इस समय के विधानमंडल ही कार्य करते रहेंगे। सातवां, राष्ट्रमंडल की सदस्यता इच्छा अनुसार। भारत तथा पाकिस्तान को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता इच्छा अनुसार रखने अथवा छोड़ने का अधिकार दिया गया। आठवां, गवर्नर जनरल को संशोधन का अधिकार। गवर्नर जनरल की आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1935 में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार संविधान सभाओं को दिया गया। नवा, भारत मंत्री पद का अंत। भारत मंत्री पद को समाप्ति कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का भारत और पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। पृष्ठ संख्या 113। दसवां, देशी रियासतों को किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की स्वतंत्रता। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उनको किसी भी अधिराज्य में शामिल होने व अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 11वां, निशेषाधिकार शक्ति का अंत। ब्रिटिश सम्राट के पद से भारत का सम्राट नामक पद भी हटा दिया गया और सम्राट की अधिराज्यों के कानूनों पर निशेषाधिकार लगाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। 12वां, भारत सचिव पद। अधिनियम में निश्चित किया गया कि भारत सचिव अथवा भारत सचिव की परिषद के द्वारा जिन व्यक्तियों को ब्रिटिश ताज के अधीन किसी भी नागरिक सेवा में किसी असैनिक सेवा के पदों पर 15 अगस्त 1947 से पूर्व नियुक्त किया जा चुका है, वे स्वतंत्रता के बाद भी अपने पदों पर बने रहेंगे और उन्हें सभी सुविधाएं और अधिकार पूर्ववत प्राप्त रहेंगे। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बन गए। स्वतंत्रता अधिनियम समस्त भारतीयों के लिए खुशी एवं उल्लास भरा अधिनियम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का काल आज समाप्त होता है और अब से ब्रिटेन के साथ हमारा अपना संबंध समानता, पारस्परिक सद्भावना और पारस्परिक लाभ के आधार पर रहेगा। कांग्रेस ने तो चाहा था कि दोनों देशों का गवर्नर जनरल एक ही रहे, किंतु जिन्ना को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ और दोनों देशों के गवर्नर जनरल अलग अलग बने। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जीना बने। देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को भारत आधी रात्र को स्वतंत्र हो गया। देश की आज़ादी से प्रसन्न होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जहां स्वतंत्रता की प्राप्ति काफ़ी हद तक हमारे त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हुई है, वहां यह सांसारिक घटनाओं के फलस्वरूप भी आई है। यह अंग्रेज जाति के लोकतांत्रिक आदर्शों तथा उसकी ऐतिहासिक परंपरा की पूर्ति है। वास्तविकता यह है कि अंग्रेजों ने मजबूर होकर भारत को स्वतंत्र कर देना उचित समझा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यह भली भांति समझ चुकी थी कि भारत में राष्ट्रीय चेतना इतनी अधिक तीव्र हो चुकी थी कि भारत को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता था। भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति अचानक नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे लंबे संघर्ष तथा भारतीयों के बलिदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पृष्ठ संख्या 114। पहला, भारतीयों में तीव्र राष्ट्रीय भावना। यदि हम यह कहें कि वर्षों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए भारतीयों में तीव्र राष्ट्रीय भावना ने कार्य किया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग और बलिदान किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद भारत में राष्ट्रीयता की भावना अपनी पराकाष्ठा पर थी, जिसे दबा कर रखना अंग्रेजों के लिए बहुत कठिन था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने तो ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया। इस आंदोलन से स्पष्ट हो गया कि भारत को अब बहुत दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। मौलाना आज़ाद के अनुसार स्वतंत्रता की इच्छा के संबंध में अब कोई भी बात गुप्त नहीं थी। रक्षा सेनाओं के सैनिकों और अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था कि उन्होंने अपना रक्त इस आश्वासन पर बहाया है कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। अब इस आश्वासन को पूरा किया जाना चाहिए। दूसरा, महात्मा गांधी का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो योगदान दिया है, उसे सदैव याद किया जाएगा। गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया तथा जनता में देशभक्ति और राष्ट्रीयता का दिव्य संदेश पहुंचाया। गांधी जी के साथ आंदोलन में केवल बुद्धिजीवी और शहरों के लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि गांव के किसान, मजदूर, छोटे बड़े उद्योगपति, व्यापारी, महिलाएं एवं विद्यार्थी भी शामिल थे। गांधी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया। 1942 के आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। इससे राष्ट्रीय चेतना और अधिक प्रबल हो गई थी। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की दुर्बलता। द्वितीय विश्व युद्ध में यद्यपि इंग्लैंड की विजय हुई, किंतु युद्ध ने आर्थिक दृष्टि से इसे बहुत कमज़ोर कर दिया। बड़े बड़े कल कारखाने बंद होने लगे। इंग्लैंड अब द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र बन गया था। भारतीय व्यापार से जितना उसे लाभ होता था, उससे कहीं ज़्यादा खर्च भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए उसे करना पड़ता था। फ्रांसिस टक्कर के शब्दों में, अंग्रेजों के भारत छोड़ने का सर्व प्रमुख कारण था कि इंग्लैंड की आर्थिक तथा औद्योगिक दरिद्रता भारतीय साम्राज्य को वहन करने के योग्य नहीं रह गई थी। पृष्ठ संख्या 115। माइकल ब्रेचर के अनुसार इंग्लैंड की कमजोर स्थिति भारत के पक्ष में इतना सबल तथ्य था कि 1945 में यदि अनुदार से दल सत्तारूढ़ होता, तो वह भी भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न को टाल नहीं सकता था। तत्कालीन भारत मंत्री ने कहा था, क्षमतापूर्वक भारत में ब्रिटिश शासन अपनी वर्तमान स्थिति में 1948 से आगे नहीं चल सकता। इस प्रकार मजबूर होकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी। चौथा, सेना में असंतोष। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो सेना में भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ज्वाला भड़कने लगी। युद्ध के बाद आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस घटना में सेना में भी राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना जागृत हुई और सरकार के प्रति असंतोष बढ़ा। 1946 ईस्वी में नौसैनिक विद्रोह और भारतीय वायुसेना की हड़ताल ने ब्रिटिश सरकार को सचेत कर दिया कि भारतीय सेना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वीपी मेनन का कहना था, इससे अंग्रेजों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यह जान लिया कि भारतीय देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद को सेना में प्रवेश होने से नहीं रोका जा सकता। पांचवा, एशिया में जागरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया के देशों में नव चेतना जागृत हुई। इनमें स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना प्रबल हुई। एशिया के राष्ट्रों ने यह अनुभव किया कि पश्चिमी देश उनका भरपूर शोषण कर रहे हैं। उनका विकास तभी संभव हो सकता है जब वे स्वतंत्र हो जाएंगे। भारत इनमें अग्रणी देश था जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जी जान से जुटा था। राष्ट्रीय भावना की लहर को ब्रिटिश सरकार रोक न सकी और मजबूर होकर भारत को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी। छठा, मजदूर दल की विजय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ जिसमें लेबर पार्टी विजयी हुई और चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की पराजय हुई। लेबर पार्टी की विजय भारतीयों के लिए लाभदायक रही। इसके नेतागण उपनिवेशवाद के विरोधी थे। चुनाव से पूर्व लेबर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यदि वह सरकार बनाती है तो भारत के लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक हल करने का प्रयास करेगी। एटली के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार बनते ही एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पृष्ठ संख्या 116। मौलाना आजाद के अनुसार भारत में स्थिति इस प्रकार की थी कि हमारे विरोध के बावजूद ब्रिटेन के द्वारा भारत पर कुछ वर्षों तक और शासन किया जा सकता था। फ्रांस यद्यपि ब्रिटेन से भी निर्बल था लेकिन यह हिंद चीन पर 10 वर्षों तक बना रहा। लेकिन एटली ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो भारतीय स्थिति का ब्रिटिश स्वार्थों के लिए उपयोग करते। इसलिए इस बात का श्रेय मजदूर दल सरकार को भी दिया जाना चाहिए जिसने सत्ता हस्तांतरण का कार्य शीघ्रता और सम्मान पूर्वक किया। सातवां, ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अनेक देशों का दबाव पड़ने लगा कि वह भारत को स्वतंत्र कर दे। युद्ध के दौरान ही अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के चियांग काईशेक ने ब्रिटेन पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका के सहयोग से ही ब्रिटेन ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई थी। अतः ब्रिटेन का आर्थिक पुनरुद्धार अमेरिकी सहायता पर ही निर्भर था। रूजवेल्ट के बाद ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने भी भारत को स्वतंत्र कर देने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने कहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटिश शासन से भारत को संवैधानिक आधार पर स्वतंत्र कराने के प्रयास में सहयोग कराए जिससे भारत में संवैधानिक आधार पर स्वतंत्र करने के प्रत्येक प्रयास में सहयोग कराए जिससे भारत में संघीय शासन की स्थापना हो सके। स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से अमेरिकी और सोवियत रूस के बढ़ते हुए दबाव के कारण ब्रिटेन के लिए भारत में अपनी सत्ता बनाए रखना अत्यधिक कठिन हो गया है। आठवां, ब्रिटेन के लिए भारत का शासन लाभदायक नहीं रहा। द्वितीय विश्व युद्ध तक अंग्रेजों ने भारत का भरपूर शोषण किया। भारत का कच्चा माल बड़े पैमाने पर ब्रिटेन गया। इधर भारत में भी औद्योगिक विकास होने से ब्रिटेन से भारत में आयात बहुत घट गया। आर्थिक दृष्टि से भारतीय साम्राज्य ब्रिटिश सरकार के लिए लाभकारी नहीं रहा। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रत्येक भाग में आर्थिक दृष्टि से रखना संभव नहीं था, क्योंकि सेना पर बहुत अधिक धन खर्च हो रहा था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत को स्वतंत्र कर देने में ही भलाई है, ताकि स्वतंत्र भारत के साथ नए सिरे से संबंध कायम किए जा सकें। पृष्ठ संख्या 117। नवा, ब्रिटिश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साधन। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कुछ ऐसे कार्य किए जिससे भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार ये कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुए। इनमें प्रमुख है यातायात तथा आवागमन के साधनों का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विकास एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, संचार के साधनों का विकास, प्रशासकीय एकीकरण आदि। माइकल ब्रिचर ने लिखा, संक्षेप में भारतीय स्वतंत्रता ब्रिटिश शासन द्वारा अनजाने में और कांग्रेस के द्वारा प्रयत्न पूर्वक एक लंबे समय से राष्ट्रीय चेतना और सामान्य उद्देश्यों को जन्म देने के लिए किए जा रहे कार्यों का स्वाभाविक और अस्वयंभाई परिणाम था। इस दृष्टि से भारतीय राज में ही स्वयं अपने विनाश के बीज निहित थे। दसवां, साम्यवाद का भय। 1917 की सफल रूसी क्रांति के बाद विश्व में साम्यवाद की लहर धीरे धीरे तेज होने लगी। पश्चिमी देशों ने साम्यवाद को रोकने के लिए जोरदार प्रयत्न शुरू किया। भारत भी साम्यवाद के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका प्रभाव अधिक बढ़ गया। जनता ने जब यह महसूस किया कि कांग्रेस पहले जैसी सक्रिय नहीं रह गई है, तब उनका झुकाव साम्यवाद की ओर होने लगा। ब्रिटिश सरकार ने साम्यवाद को भारत में बढ़ने से रोकने के लिए भारत को स्वतंत्र कर देना उचित समझा। 11, ब्रिटेन में भारत के प्रति जनमत। 1939 के बाद ब्रिटिश जनमत में तेजी से सुधार हुआ। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जवानों ने ब्रिटेन का साथ दिया। इससे भी ब्रिटेनवासी बहुत प्रभावित हुए थे। ब्रिटेन के लोगों का अब भी विचार था कि भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने का कोई खास औचित्य नहीं है। 1945 में हुए चुनाव में मजदूर पार्टी की विजय का एक मुख्य कारण इस पार्टी का भारत के प्रति सहानुभूति भी था। ब्रिटेन भारत के प्रति प्रकट सहानुभूति को अधिक दिनों तक नहीं टाल सके। 12वां, आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने भी भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के माध्यम से देश को आजाद कराना चाहते थे। बोस ने अपने जोशीले भाषण में कहा था, मैं आपको युद्ध और कठिनाइयों के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकता। लाल किले तक पहुंचने और राष्ट्रीय झंडा फहराने से पूर्व आपको अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था और भारत की ओर कूच से पहले बोस ने कहा था। पृष्ठ संख्या 118। भारत के सिपाहियों, वहाँ दूर नदियों, जंगलों और पहाड़ों के पार हमारा देश है, जहाँ की मिट्टी से हम बने हैं, जहाँ हम जा रहे हैं। सुनो, हिंदुस्तान पुकार रहा है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली तुम्हें पुकार रही है। हमारे 38 करोड़ देशवासी तुम्हें पुकार रहे हैं। उठो, अब खाने के लिए सामान नहीं है, हथियार उठाओ। दिल्ली का रास्ता आज़ादी का रास्ता है, दिल्ली चलो। बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी की, जिसका प्रधान कार्यालय वर्मा में था और जिसकी स्थापना के तुरंत बाद जर्मनी तथा जापान ने इसे मान्यता प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार आज़ाद हिंद फौज से घबरा गई। यद्यपि आज़ाद हिंद फौज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी, फिर भी इसके अदम्य उत्साह ने जनता में व्याप्त दिव्य उत्तेजना को तेज किया। 13वां, पाकिस्तान के निर्माण पर कांग्रेस की सहमति। कांग्रेस तथा महात्मा गांधी प्रारंभ से ही मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते आ रहे थे। दूसरी ओर मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण की जिद पर दृढ़ता से अड़ी रही। लीग पाकिस्तान के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने को तैयार नहीं थी, किंतु जब माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया, तब भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। अब ब्रिटिश सरकार के पास कोई बहाना नहीं रहा और देश को स्वतंत्र करना पड़ा। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की अंगड़ाई ली और उसी दिन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल ने नए मंत्रिमंडल को शपथ ग्रहण करवाई। पट्टा भी सीताराम मैया ने लिखा, देश की आज़ादी समय और परिस्थितियों के परिवर्तन का फल था। संदर्भ, पहला, बिपिन चंद्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, पृष्ठ संख्या 398। दूसरा, दीनानाथ वर्मा, आधुनिक भारत, पृष्ठ संख्या 481। तीसरा, उपरोक्त संख्या 1, पृष्ठ संख्या 457। चौथा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम, पृष्ठ 127। पांचवा, माइकल ब्रेचर, नेहरू बायोग्राफी, पृष्ठ संख्या 373।